डार्क क्लब की नेक्स्ट एपिसोड पेशे खिदमत है। समझ गया जनाब, लेकिन ये आप बैठे बैठाई सागा लाइन कैसे पहुंच गए? ब्लैक जीरो ने कहा। बैठे बैठाई नहीं, बल्कि बाकायदा चलकर एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से तैयारे में मैं सवार हुआ, तो वहां भी चलकर सीट तक पहुंचा। इमरान ने तफसील शुरू कर दी। बस बस मैं समझ गया, लेकिन क्या कोई केस था? कम से कम मुझे तो बता देना था, ब्लैक जीरो ने संजीदा लहजे में कहा। केस ही समझ लो, वो अपने कर्नल फरीदी के हाँ बगैर शादी के बच्चा होने वाला था। मैंने सोचा कि चलो मुबारकबाद दे हूं, शादी के बाद तो बच्चे होते ही रहते हैं। ये अलबत्ता काबिल मुबारकबाद अकदाम था, इमरान ने कहा। और ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। अच्छा ओके, मैंने फोन तो एक और मकसद के लिए किया था, लेकिन ठीक है, मैं शायद आज ही वापस आ जाऊं, फिर बात कर लेंगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। क्लर्क जो किसी और शख्स के साथ बात कर रहा था, इमरान के रिसीवर रखते ही चौंक कर सीधा हो गया और उसने मीटर चेक करके एक रसीद पर रकम लिखी। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर उसे दिया और क्लर्क ने बकाया रकम गिननी शुरू कर दी। कमाल है यार, ये अर्दन दास न जाने बैठे बैठे कहां गायब हो गया, कहीं नजर नहीं आ रहा। अब इसकी फॉरन डाक भी मुझे ही भेजनी पड़ेगी, सब पोस्टमास्टर मेरे घरे पड़ रहा है, एक और आदमी ने क्लर्क से मुखातिब होकर कहा। अर्जन दास वो जो फॉरन डाक काउंटर पर था, वो अभी थोड़ी देर पहले तो बैठा था, वो तो बड़ा फर्ज शनास लड़का है, कहां चला गया? क्लर्क ने इमरान की बकाया रकम गिनते हुए इस आदमी को जवाब दिया। मालूम नहीं, इशारा ढूंढ आया हूं, इतना पता चला है कि वो टॉयलेट्स की तरफ गया है, फिर नजर आया है, टॉयलेट्स में भी देख आया हूं, वहां भी नहीं है, इस आदमी ने कहा। कमाल है, चलो तुम इसकी डाक तो बंद करो, हो सकता है इसको एमरजेंसी पड़ गई हो, यार आदमी है, डाक रहेगी तो मुअत्तल हो जाएगा, क्लर्क ने बकाया रकम इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने रकम और रसीद लेकर जेब में रखी और फिर वापस जाने के लिए मोड़ा। इसी दम में उसकी नजरें एक लंबे तिरंगे आदमी पर पड़ी जो एक ऊंचे से स्टूल की ओट में खामोश खड़ा था। अलबत्ता उसकी नजरें सामने काउंटर पर जमी हुई थी और जब इसकी नजरों के ताकब में इमरान ने देखा तो उसका जहन चकलक खटक गया। इस आदमी की नजरें फॉरन डाक वाले खाली काउंटर पर ही जमी हुई थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस आदमी के करीब से गुजरा, इसने भी गर्दन मोड़कर इमरान की तरफ देखा। इमरान ने सरसरी से अंदाज में उसे देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन इस सरसरी जायजे से ही वो बुरी तरह चौंक गया था। उसने इस आदमी के सर पर मस्नूई बालों की विग चेक कर ली थी और सिर्फ विग तो खैर ऐसी कोई मशकूक बात ना थी, क्योंकि अक्सर गंजे या नीम गंजे सिरों पर विग लगाते रहते हैं, लेकिन इमरान ने उसकी आंखों का रंग देख लिया था। ऐसा रंग मकामी लोगों की आंखों का नहीं हो सकता था और इसी बात ने उसे मशकूक कर दिया था। फिर इन दोनों क्लर्कों की बातें भी उसके जहन में थी, लेकिन उसे यह मालूम न था कि इस चक्करबाजी का मकसद क्या है। क्लर्क उठकर कहीं चला गया है, एक विग वाला आदमी काउंटर की निगरानी कर रहा है, लेकिन किस लिए क्यों? यह एक ऐसा सवारिया निशान था जिसका जवाब उसके पास ना था, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। आगे जाकर वो राहदारी से मुड़कर अकबी सीमत में आ गया। वहां पहुंचते ही अचानक उसकी नजरें इमारत से हटकर बने हुए टॉयलेट्स पर पड़ गई और उसे क्लर्क की बात याद आ गई कि गायब होने वाला आदमी को टॉयलेट्स की तरफ जाते देखा गया है। इसके बाद वो गायब हो गया था। इमरान बेख्याली में टॉयलेट्स की तरफ बढ़ गया। टॉयलेट के करीब पहुंचकर वो जकलक उछल पड़ा। उसने दो आदमियों के कदमों के निशानात वाज़ह तौर पर टॉयलेट की पिछली तरफ जाते हुए देखे। आम आदमी तो शायद इन निशानात पर गौर न करता, लेकिन इमरान के जहन में चौके खलश सी पैदा हो गई थी, इसलिए वो इन निशानात को देखकर चौंका और तेजी से अकबी तरफ बढ़ा और दूसरे डब्बे उसके मुंह से एक तवील सांस निकला। टॉयलेट के अकब में सरकंडों पर एक नौजवान की लाश पड़ी हुई थी, उसके सीने से खून निकल निकल कर सरकंडों पर जम गया था। लबास से ही वो लाश किसी क्लर्क की नजर आ रही थी। इमरान तेजी से पलटा और फिर वो राहदारी से होता हुआ सामने वाले बरामदे में आया। अब सूरत हाल उसके जहन में कुछ वाजिया हो गई थी। क्लर्क को काउंटर से हटाया गया और काउंटर की बकायदा निगरानी की जा रही थी। इस सारे खेल का मकसद क्या था, क्यों ऐसा किया गया, ये बात अलबत्ता गौर तलब थी। इमरान राहदारी में पहुंचते ही एक साइड में छुप गया। वो विग वाला आदमी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन अब काउंटर खाली ना था बल्कि फॉरन कॉल वाले क्लर्क से बात करने वाला दूसरा क्लर्क काउंटर पर पड़े हुए लिफाफे समेट रहा था। इमरान खामोश खड़ा रहा। लिफाफे समेट कर वो क्लर्क वापस चला गया, लेकिन वो निगरानी करने वाला बदस्तूर अपनी जगह मौजूद था। अलबत्ता उसकी नजरें अब काउंटर की बजाय इस आदमी का ताकब कर रही थी जो लिफाफे समेट कर अंदर वाली मेज की तरफ बढ़ रहा था। उसने लिफाफे एक खाकी रंग के थैले में डाले और उन्हें सील करना शुरू कर दिया, और इमरान ने इसी दम में देखा कि निगरानी करने वाले के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उमर आए थे, जैसे उसका मकसद हल हो गया हो। वो अब तेजी से बरामदे से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा जा रहा था। इमरान खामोश खड़ा उसे जाते देखता रहा। जब वो एक कार में बैठकर गेट की तरफ बढ़ा तो इमरान ने उसकी कार का नंबर, रंग और मॉडल चेक किया। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि उसका ताकब करे, लेकिन फिर उसने इरादा तर्क कर दिया। उसके जहन के मुताबिक वो लिफाफे ज्यादा अहम थे जिन्हें सील होते देख कर वो मुतमन हुआ था, और ना जाने किस वजह से उसने असल क्लर्क को भी गोली मारकर हरा कर दिया था। शायद वो किसी जगह किसी वजह से उसकी तरफ से मशकूक हो गया होगा। लेकिन अब मसला था इस थैले को चेक करने का। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो फरीदी को फोन करे, लेकिन फिर उसने इरादा तर्क कर दिया क्योंकि फरीदी उसके साथ ही कोठी से निकला था। वो तेज तेज कदम उठाता इस तरफ बढ़ने लगा जिधर पोस्ट मास्टर का दफ्तर था। पोस्ट मास्टर के दफ्तर के बाहर एक चपड़ासी मौजूद था। साहब है अंदर, इमरान ने बड़े तहकमाना लहजे में चपड़ासी से पूछा। जज जी हां, चपड़ासी ने उसके लहजे से मुतासर होते हुए घबराकर जवाब दिया, और इमरान तेजी से चिक उठाकर अंदर दाखिल हो गया। यह एक खासा बड़ा कमरा था और बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा कागजात पर दस्तखत करने में मसरूफ था। इमरान के अंदर आने की वजह से उसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजनबियत के तासरात उमर आए। जी फरमाइए, पोस्ट मास्टर ने चौंक कर कहा। जनरल साहब, मैं कर्नल फरीदी का बास हूं, इमरान ने करीब जाकर स्पॉट लहजे में कहा। ओ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पोस्ट मास्टर जकलक बुखलाकर खड़ा हो गया, और इमरान दिल ही दिल में कर्नल फरीदी के बास की दहशत का अंदाजा लगाकर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। जी फरमाइए, क्या हुक्म है जनाब, पोस्ट मास्टर ने घबराए हुए लहजे में पूछा। एक सीक्रेट मसला है, आप जिम्मेदार अफसर हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा इस तरह लगाने के मुझे खुद आना पड़ा, और वो भी बगैर इतना दिए क्योंकि टेलीफोन भी टेप हो सकता है। इमरान का लहजा और ज्यादा तहकमाना हो गया। जी मैं समझता हूं जनाब, फरमाइए, आपको कोई शिकायत ना होगी जनाब, पोस्ट मास्टर बिल्कुल ही भेड़ बन गया। उसका महकमा ऐसे था कि उसे शायद कभी भी सीक्रेट सर्विस टाइप के अफराद से वास्ता ना पड़ा होगा। अलबत्ता कर्नल फरीदी का नाम तो जारा सागालैंड का बचा बचा जानता था, और जब ऐसे आदमी के सामने कर्नल फरीदी का भी बास पहुंच जाए तो जारा इसकी ये हालत तो होनी थी। आप खुद उठकर जाए और खामोशी से आज का फॉरन डाक का थैला लेकर यहां आ जाए, किसी को शक नहीं पड़ना चाहिए और ना ही कोई चौंके, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। फॉरन डाक का थैला, ओ हाँ, वो सीन हो गया होगा, मैं ले आता हूं, पोस्टमास्टर ने जल्दी से कहा, और फिर उठकर तेज तेज कदम उठाता दफ्तर से बाहर निकल गया। और इमरान जेर में मुस्कुरा दिया। पहले उसका ख्याल था कि कर्नल फरीदी के असिस्टेंट के तौर पर अपना तारफ कराए, लेकिन ये ख्याल ही उसने झटक दिया था क्योंकि उसकी फितरत के ये खिलाफ था। चंद ही मिनट बाद पोस्टमास्टर अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में वही खाकी थैला था जिसे सील लगी हुई थी। चपड़ासी को बुलाकर कह दें कि वो किसी को अंदर ना आने दे और दरवाजा भी बंद कर दे। इमरान ने उसे मुखातिब होकर कहा और पोस्ट मास्टर ने बजाय चपड़ासी को अंदर बुलाकर हुक्म देने के घबराहट में खुद ही दरवाजे पर जाके उसे हदायत दी और फिर दरवाजा खुद ही बंद करके चुटकनी चढ़ा दी। इसे खोले मैंने इसकी डाक चेक करनी है, एक अहम सरकारी दस्तावेज के मुतालिक इतना मिली है कि वो किसी लिफाफे में बंद करके भेजी जा रही है, इमरान ने कहा। जी बेहतर, पोस्टमास्टर ने कहा और उसने जल्दी से थैले के कागज काटने वाली छुरी से एक तरफ फाड़ दिया। इमरान ने इसके अंदर मौजूद तमाम लिफाफे बाहर मेज पर निकाल दिए। ये लिफाफे तादाद में तकरीबन 50 थे। क्या फार्म डाक किस्तों में जाती है या ये आज की सारी डाक है, इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, चूंकि ये डाक खासी तादाद में होती है इसलिए हर 2 घंटे बाद भेज दी जाती है, पोस्टमास्टर ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। वो एक एक लिफाफे को उठाकर गौर से देख रहा था। मुख्तलिफ साइजों के और मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाने वाले लिफाफे थे। देखते देखते उसकी नजर एक लिफाफे पर पड़ी और इमरान चौंक पड़ा। लिफाफे के कोने पे क्राफ्ट का नाम लिखा हुआ था। ये नाम देखते ही वो चौंका था। उसे डार्क क्लब के चीफ मास क्राफ्ट का नाम याद आ गया था। उसने जल्दी से लिफाफा उठाया। लिफाफे पर नाराज का पता दर्ज था, किसी वाल्टर आस्टन का पता था। इमरान ने क्राफ्ट का पता देखा, वहां 40 मॉडल कलोनी लिखा हुआ था। आपके पास सेंसर मशीन होगी, इस लिफाफे को खोलकर दोबारा बंद भी करना है और इस तरह के मशकूक ना हो, इमरान ने पोस्ट मास्टर से कहा। जी हाँ, नई मशीन कल ही आई है, अभी मैंने इसे डिलीवर नहीं किया, यही दफ्तर की अलमारी में मौजूद है, पोस्ट मास्टर ने कहा। और उसने उठकर एक अलमारी खोली और उसमें से सेंसर करने वाली एक जदीद तरीन मशीन निकालकर मेज पर रख दी। इमरान ने लिफाफा इस मशीन में डाला तो उसका गूंद वाला हिस्सा खुल गया। इमरान ने उंगलियों की मदद से अंदर मौजूद कागज बाहर निकाल दिए और फिर कागज खोलते ही उसका दिल बिलियों उछलने पड़ा। वो नक्शा था जिस पर जोश ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के अल्फाज वाज़ेह नजर आ रहे थे, साथ ही एक कागज था। इमरान ने वो कागज खोला तो उसमें एक छोटा सा पैगाम दर्ज था कि नक्शा जीरो चीफ को पहुंचा दिया जाए कि वो उसे जेओ तक पहुंचा दे। क्राफ्ट और डीसी के अल्फाज दर्ज थे। इमरान ने इस कागज को दोबारा तह किया। पोस्ट मास्टर खामोश बैठा उसे देख रहा था। इमरान ने बूट की टो मेज के किनारे पर आहिस्ता से मारी तो एक हल्का सा खटका हुआ और पोस्ट मास्टर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा और इमरान ने उसकी तवज्जा हटते ही नक्शे वाला कागज तेजी से कोट की जेब में खसका दिया जो मेज के साथ लगी हुई थी। उसने इस कदर फुर्ती और महारत से यह काम किया था कि पोस्ट मास्टर को एहसास तक ना हो सका। दरवाजा तो बंद है जनाब, पोस्ट मास्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। खटका तो हुआ था, बरहान होगा कुछ, इमरान ने बेनियाजी से कहा और पैगाम वाला खाली कागज उसने वापस लिफाफे में डाल दिया। अब पोस्ट मास्टर दोबारा मतवज्जे हो गया था लेकिन उसे अंदाजा ना हो सका था कि इमरान ने वापस एक कागज लिफाफे में डाला है या दो। इमरान ने लिफाफे को मशीन में डालकर दोबारा बंद किया और फिर एक और लिफाफा उठाकर उसे मशीन में डाल दिया और फिर उसे खोलकर उसमें मौजूद कागज निकालकर पढ़ने लगा। यह कोई कारोबारी खत था, इसने इसे दोबारा लिफाफे में डाल दिया और लिफाफा बंद कर दिया। ठीक है, इनमें ऐसी कोई मशकूक लिफाफा नहीं, शायद हमें मिलने वाली इतना गलत हो, बहरहाल तावन का शुक्रिया, इसे आप सील करके भिजवा दें, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। जनाब यह तो हमारा फर्ज था, पोस्ट मास्टर ने भी उठकर कहा और इमरान उससे मुसाफा करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने चुटकनी खोली और चक उठाकर बाहर चला गया। बाहर चपड़ासी मौजूद था, वो उसे हैरत से देखने लगा लेकिन इमरान तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ता गया। डाकखाने में हालात ममूल पर थे इसलिए इमरान समझ गया कि अभी तक इस नौजवान क्लर्क की लाश का किसी को इलम नहीं हुआ। चंद नमों बाद ही उसकी नीली डाटसन हेडपोस्ट ऑफिस के मेन गेट से बाहर आ गई। इमरान इस इत्तफाक पर हैरान था कि कुदरत ने उसे किस तरह हैंड पोस्ट ऑफिस पहुंचाया और इस अहम तरीन नक्शे को हासिल करने में कामयाब हो गया। अब इमरान को यकीन हो गया था कि वो विगवाना आदमी जो निगरानी कर रहा था वो बजाते खुद डार्क क्लब का चीफ मास क्राफ्ट था, क्योंकि विग से अंदाजा होता था कि विग उसने अपने गंजेपन को छुपाने के लिए ही लगाई होगी। अभी उसकी कार सड़क पर कुछ ही दूर आगे बढ़ी होगी कि एक और कार तेजी से उसके पीछे आई और उसके करीब होकर चलने लगी। उसे एक नौजवान चला रहा था। जनाब, मेरा तनक ब्लैक फोर्स से है। कर्नल फरीदी साहब की हदायत है कि आप जहां भी मेरे आपको पैगाम दे दिया जाए कि आप फौरन उनकी कोठी पहुंच जाए, उन्हें कोई एमरजेंसी है। नौजवान ने खिड़की से सर निकालते हुए ऊंची आवाज में इमरान से मुखातब होकर कहा, ठीक है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और नौजवान कार दौड़ाता हुआ आगे निकल गया। चीफ मास का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मेज के सामने कुर्सियों पर डार्क क्लब के तकरीबन तमाम मेंबर मौजूद थे, जिनमें बार्टन अभी तक सेक्रेटरी दाखिला मालन कपूर और शेरी राजश्री के मेकअप में थी, बाकी लोग अपनी असल शक्लों में थे। क्राफ्ट खत पोस्ट करके जब वापस हेडक्वार्टर पहुंचा तो वहां पहुंचे ही उसे इतना मिली कि कर्नल फरीदी वाला मिशन नाकाम हो गया है। उनके दो मकामी साथी भी हलाक हो गए हैं, लेकिन बार्टन और शीरी बचकर निकलने में कामयाब हो गए हैं। क्राफ्ट ने पहले ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना मेकअप साफ किया और फिर वो अपने मखसूस कमरे में पहुंच गया जहां उसके साथी मौजूद थे। वो उसे देखकर एहतरामन खड़े हो गए। बैठ जाओ, मुझे इतला मिली है कि तुम नाकाम रहे हो बार्टन, क्राफ्ट ने गौर से बार्टन को देखते हुए पूछा जो मालन कपूर के मेकअप में था। यह दुरुस्त था जनाब, एन आखिरी लम्हे में वो हैरत अंगेज फुर्ती से बच निकला और उसने हमारे दो आदमी भी हलाक कर दिए। हमने फौरन वहां से निकलने की सोची, वरना शायद हम भी बचकर न आ सकते, बार्टन ने जवाब दिया। तफसीर बताओ, क्राफ्ट ने बिगड़े हुए लहजे में कहा और बार्टन ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसीर बता दी। तो तुम दोनों नाकाम रहे और जानते हो कि नाकामी की सजा डार्क क्लब में क्या मुकर्रर है, क्राफ्ट ने दांत पीसते हुए कहा। यस बास, मौत। मैं इस सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन इस नाकामी में हमारा कोई कसूर नहीं है, बार्टन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में इत्मीनान था, जैसे वो अपनी मौत को कबूल कर चुका हो, जबकि शीरी का खौफ के मारे बुरा हाल था। बाकी साथी भी खामोश बैठे हुए थे। हो, तुम ठीक कहते हो, कर्नल फरीदी के मुकाबले में तुम्हारा कसूर नहीं हो सकता, वो है ही ऐसा आदमी, क्राफ्ट ने बिगड़े हुए लहजे में कहा और शीरी की आंखों में इत्मीनान की झलकियां नमाया हो गई। जारी है।